समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स एंड नमस्कार टू यू एज वेल आकर्षिता। वेलकम टू आवर शो परिक्रमा। यस, इट्स द सैटरडे एडिशन ऑफ परिक्रमा एंड हस्बे दस्तूर हम लाते हैं देश दुनिया की तो खबरें लाते हैं, बट क्योंकि नाम है शो का परिक्रमा, सो वील डू द परिक्रमा ऑफ द कंट्री, गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी वॉट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव फ्रॉम देयर, ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर रफली, बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to the youth in Rozgar Mela, says they have a big responsibility to strengthen nation's economy, internal security and develop modern infrastructure.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों का मुकाबला करने का आह्वान किया।
In Gujarat, over 550 illegal immigrants, mainly from Bangladesh, detained in massive crackdowns across Ahmedabad and Surat.
आकाशवाणी ने मुंबई में इंडिया ऑडियो समिट अवार्ड्स 2025 में विभिन्न श्रेणियों में 6 पुरस्कार जीते।
Funeral service for Pope Francis begins at St. Peter's Square in Rome. World leaders and thousands of faithful attend.
और IPL क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा।
And Akarshita, before we move ahead with the program and start with Dateline India, a very important advisory to all the media has come from the Information and Broadcasting Ministry, which has issued an advisory to all media channels to refrain from showing live coverage of anti-terrorist operations and movement of security forces in the interest of national security. It is said that the media, digital platforms and individuals play a vital role in safeguarding national security. The ministry asked them to refrain from reporting sources-based information related to defense operations or movement. It said premature disclosure of sensitive information may inadvertently assist hostile elements and endanger operational effectiveness and the safety of the personnel. The ministry highlighted that the past incidents have underscored the importance of responsible reporting during events such as the Kargil war, the Mumbai terror attacks of 2611 and the Kandahar hijacking. Unrestricted coverage had unintended adverse consequences on national interest. The Cable Television Network Amendment Rules state that no program should be carried in the cable service which contains live coverage of any anti-terrorist operation by the security forces. A very important advisory that has come in, Akarshita, because we are still probably, you know, itni badi tragedy hui hai, the entire nation.
Ubhar nahi paaye hain.
Absolutely. Aur mere khayal se jab tak koi thos kadam ho na ubharna chahiye bhi nahi. Some incidents should not be forgotten. And yes, let's go ahead with the Dateline India. Today we have two very important topics. First is World Veterinary Day. And of course, the second topic is on Intellectual Property Day. Both are observed today. Talking about World Veterinary Day, it is observed annually on the last Saturday of April, which is a day dedicated to recognizing the invaluable contribution of vets in promoting animal health, welfare and public safety. It serves as a global platform to acknowledge the dedication of veterinary professionals who tirelessly work to ensure the well-being of animals, prevent diseases and support sustainable livestock management.
आज विश्व पशु चिकित्सा दिवस है। इस दिन का उद्देश्य पशु स्वास्थ्य देखभाल और पशु क्रूरता को रोकने के लिए कदम उठाने के बारे में जागरूकता फैलाना है। ये दिन पशु चिकित्सा पेशे को सम्मानित करता है और पशुओं की मानव पशु चिकित्सक पशु जनित बीमारियों को रोकने और मानव और पशु स्वास्थ्य मुद्दों पर अनुसंधान करके मानव स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में योगदान करते हैं। पशु चिकित्सक खेतों, चिड़ियाघरों और वन्य जीव आवासों पर जानवरों की देखभाल सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सायरा, अगर हम बात करें तो आए दिनों हम सुनते हैं कि बर्ड फ्लू फैल रहा है या बहुत ढेर सारी ऐसी बीमारियां रहती हैं जो पशुओं में होती हैं और फैलती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हमें हार्म नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आम लोगों को भी इससे संक्रमण का खतरा रहता है। तो इस जो है विषय पे बात करना बहुत बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि पशु चिकित्सक इसमें अहम भूमिका निभाते हैं।
यस, एब्सोल्युटली। एंड इवन इफ यू टॉक अबाउट आवर ओन पेट्स इन आवर होम, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट देम वैक्सीनेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, वी गेट देम स्टेरिलाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बी इट योर डॉग्स, बी इट योर कैट्स, यू नो एनी पेट दैट यू हैव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक देम फॉर रेगुलर चेकअप्स टू द वेट्स। The idea for World Veterinary Day started in the year 2000 after the World Veterinary Association highlighted the important role that vets play in the society. The theme for this year is Animal Health Takes a Team. To mark the occasion, the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy today organized a national workshop in New Delhi. The workshop highlighted the welfare schemes for animals as well as their conditions in the country. Addressing the workshop, Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, Dr. S.P. Singh Baghel said that India is on the top position in the milk sector. He stressed that the government is promoting artificial insemination to increase the number of cows in the country so that the demand for milk-based products can be fulfilled.
फिशरी में हम वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर फिशिंग में हो गए हैं और दूध में हम नंबर एक पे हैं। 469 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिस्से में दूध आ रहा है और मिल्क प्रोडक्ट भी आप देख रहे हैं कि आम आदमी तक अब पनीर, चीज़, मक्खन, घी, छाछ और अमूल और मदर डेयरी जैसी संस्थाओं में दूध से कुछ क्या क्या बन सकता है वो भी आम जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं।
And Akarshita, the veterinary services, they are increasingly multifaceted, from ensuring the health of the livestock and poultry to managing zoonotic diseases and promoting animal welfare. Vets undertake a wide range of responsibilities. Their work extends beyond traditional animal care, impacting the economy, पब्लिक हेल्थ एज यू हैड मेंशनड एंड आल्सो द एनवायरमेंट।
जी हाँ, हर किसी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पशु चिकित्सक का पेशा सिर्फ पालतू जानवरों की देखभाल करना नहीं है, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और संवर्धन के बारे में भी है। पशु चिकित्सक रोगाणुरोधी प्रतिरोध, खाद्य सुरक्षा और पशु कल्याण के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका कार्य मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बनाना है। और जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं, हम इतने ढेर सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो है इस्तेमाल करते हैं और कभी भी मतलब उनमें कुछ बीमारी होती है तो उससे संक्रमण का खतरा हमें भी रहता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम पशुओं का भी ख्याल रखें, जानवरों का भी ख्याल रखें और साथ साथ अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि दोनों को एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों की हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
Yes, absolutely. And there are nearly 75% of emerging infection diseases that are zoonotic in nature. Zoonotic means they are transmissible from animals to humans. And this is where the vets, they play a very important role. They are the frontline defenders in disease prevention. The second topic today we have in Dateline India is World Intellectual Property Day. And yes, every year World Intellectual Property Day is observed on 26th of April with an aim to acknowledge the importance of intellectual property or IP in fostering innovation, protecting artists and advancing global economic and cultural growth. The day encourages individuals and communities to recognize the unique contributions of innovators who use their creativity to create a positive change in the society.
जी हाँ, आज हम विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मना रहे हैं। इसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और नवाचार तथा रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। और अभी हम अगर बात कर रहे हैं बौद्धिक संपदा दिवस के बारे में, तो सायरा, मान लीजिए कि हम कोई कविता लिखते हैं या कोई कहानी लिखते हैं हमारे श्रोता, और मान लीजिए वो कविता और कहानी किसी और न्यूज़पेपर में आपको दूसरे दिन जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको किसी और न्यूज़पेपर में पब्लिश मिलती है, तो आप क्या करेंगे? तो ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि जो भी हमारी बौद्धिक संपदा है, जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो हमने खुद से क्रिएट किया है, उस पर हमारा अधिकार होता है और वो हमारा अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता। हमारी बौद्धिक संपदा सिर्फ हमारी है। तो इस दिवस को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। बौद्धिक संपदा वो संपत्ति है जो मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाओं से उत्पन्न होती है, जैसे कि कोई आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, प्रतीक, नाम और डिजाइन। बौद्धिक संपदा अधिकारों का मुख्य उद्देश्य इन अमूर्त संपत्तियों के रचनाकारों को संरक्षण प्रदान करना है।
That's absolutely right. And intellectual property laws and rules, they safeguard these intangible goods, you can say, by granting creators exclusive rights for a specific period of time. And intellectual property allows innovators to obtain recognition and also financial rewards for their efforts, while society benefits from continuous innovation. And in fact, very few people know ki agar aapka maan liye, jaise aapne kaha na, koi kavita hai ya koi idea hai, you know, ek symbol, ek design, whatever it is, you can actually go and get a patent for it and get your copyright registered actually, so that jahan bhi aap uska infringement dekhe, you can actually sue that person or company or entity.
Aur isse aap apni financial sthiti bhi kafi mazboot kar sakte hain, kyunki agar aapne koi rachna ki hai aur wo kahin publish hoti hai aur aam logo mein pahunchti hai, logo tak pahunchti hai, usse kuch benefit hota hai financially, to aap usme bhi apni hissedari mang sakte hain.
Yes, absolutely.
To patent aur copyright aur trademark, ye sab aise important aspects hain ki hum kabhi bhi apni कोई भी क्रिएटिविटी करे तो ये जरूर सोचे कि हम इसको रजिस्टर कहाँ करवा रहे हैं.
यस एब्सोल्युटली. और मेरे ख्याल से स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क इज स्टिल नीडेड टू बी डन टू स्ट्रेंथन दीज लॉज, बिकॉज वी ऑल नो के कभी हम लोग कोई गाना सुनते हैं कहते हैं कि अरे ये तो इंग्लिश सॉन्ग का यू नो ट्यून थी. यू नो देर आर सो मेनी सॉन्ग, सो मेनी आई मीन इन्यूमरेबल्स एंड वेरी समटाइम्स बाय वेरी फेमस म्यूजिशियंस जो कि प्लेजराइज्ड होते हैं अनफॉर्चुनेटली, एंड द रियल ओनर नेवर रियली गेट्स एनी क्रेडिट. For them, you know?
और अक्सर हम सुनते हैं कि कोई गाना आया तो हम बोलते हैं कोई नया गाना रिमिक्स आया, तो हम बोलते हैं पुराने से वो उठा लिया.
Yes.
और अभी बहुत बड़ा एक कॉन्सर्ट हुआ था जहाँ पे आपने देखा कि वो सिंगर का गाना बजा था, तो वो बोलते हैं कि इससे हमें क्या मिला. तो ये एक तरीके से एक जागरूक करना है जो
right.
भी जिस भी इंसान की क्रिएटिविटी है उसको महत्व देना.
Yes.
उसको फाइनेंशियली भी हेल्प करना है.
यस एब्सोल्युटली. एंड दिस इयर्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे एनकरेजेस अस टू कंसीडर हाउ आईपी राइट्स एंड इनोवेशन regulations enable creators, inventors and entrepreneurs to bring new ideas while protecting their work.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. बिहार में आज दो स्थानों पर राष्ट्रीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया. राजधानी पटना में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और बोधगया में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट.
बिहार में पटना के अधिवेशन भवन और IIM बोधगया में 15वें राष्ट्रीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया. पटना में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और बोधगया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विभिन्न केंद्रीय विभागों में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. आज दोनों समारोहों में 280 से अधिक नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए. नवनियुक्त कर्मियों ने नियुक्ति पत्र पाने के बाद प्रसन्नता जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया.
मेरा नाम पूजा है, मैं पंजाब आपसे आई हूँ और मुझे एम्स पटना मिला है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ PM नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया है. जो हम चाहते थे जॉब वाली जॉब वो हमें मिल गई है. मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ. और मेरे हिसाब से कि ये बहुत जरूरी है हर एक लड़की का अपने पैरों पे स्टैंड होना ताकि हम अपनी मनचाही जॉब ले सके.
मेरा नाम नैन्सी सिंह है, मैं नालंदा बिहार की रहने वाली हूँ और मेरा चयन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हुआ है AG3 टेक्निकल ग्रेड. जैसे हम लोग देख रहे हैं आजकल भारत की सारी फीमेल जितनी भी कैंडिडेट्स हैं अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं और लगातार आगे बढ़ रही है और अपने कंट्री के लिए अपने जिस भी स्टेट में काम कर रही है वो निरंतर अच्छा करते जा रही है. तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो उन्होंने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड किया कि हम जो भी पढ़ते आए हैं अपने पढ़ाई किए हैं अब उसको स्किल्स को हम अपने फील्ड में अपने फार्मर्स के लिए हेल्प करने के लिए उनको अपना अप्लाई कर पाएंगे.
मेरा नाम तन्वी है और मुझे आज नर्सिंग ऑफिसर एम्स पटना में नियुक्ति पत्र मिला है रोजगार मेला में. तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आज ये नियुक्ति पत्र मिला है और मैं ऐसे ही एम्स पटना में अपनी सेवाएं देती रहूंगी.
विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री के बताए रास्ते पर चलने और उनके विजन का पालन करने की बात कही. परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय.
तो श्रोताओं, आज हम देश में एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं और उस समस्या का नाम है नशा. एक ऐसी ही खबर है हरियाणा से। हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में खाप पंचायतों का काफी प्रभाव है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो प्रदेश में नशों के खात्मे के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, ने खाप प्रतिनिधियों से नशे के खात्मे के लिए सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा है कि खापों का हमारे समाज में विशेष प्रभाव रहा है। युवा खापों से संस्कार सीखते रहे हैं, इसीलिए खाप युवाओं को नशे से मुक्ति में अहम योगदान दे सकती है। ये एक ऐसा गंभीर विषय है जिसके पूरे समाज पर दुष्प्रभाव आ रहे हैं। नशे के खात्मे के लिए उनसे व सरकार से खापे जितना भी सहयोग चाहेंगी वो दिया जाएगा।
प्रदेश में नशा मुक्त हरियाणा के संदेश के साथ साइक्लोथोन भी चल रही है। इस दौरान हरियाणा के खाप प्रतिनिधियों का साथ साइक्लोथोन को मिल रहा है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि खाप प्रतिनिधि एक मुहिम चलाएं और युवाओं को नशे से दूर रखें और नशा मुक्त हरियाणा बनाने में सहयोग दें। उन्होंने कहा है कि साइक्लोथोन यात्रा एक जागरूकता का प्रयास है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य नशों को जड़ से खत्म करना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें अपने युवा को नशे की बुरी लत से बचाना है। हमने अधिक से अधिक युवाओं को खेलों से जोड़ना है ताकि वे खेलों में अधिक से अधिक पदक लाकर हरियाणा का नाम और देश का नाम रोशन करें। खाप प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है कि उन्हें इस सामाजिक सेवा के कार्य में वे पूरा सहयोग देंगे। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
And well, a very positive story, a story of great achievement and accomplishment is coming from the capital itself, where the largest ever adrenal tumor in the world has been removed robotically in a minimally invasive fashion in Delhi. The complex surgery was conducted at Safdarjung Hospital on a 36-year-old woman. Medical superintendent of the hospital, Dr. Sandeep Bansal, informed that the tumor measuring 18.2 by 13.5 centimeters is the largest ever adrenal tumor in the world to have been removed robotically in a minimally invasive fashion. Let's hear more from our correspondent.
The robotic surgery was conducted by professor and head of the Department of Urology and Renal Transplant, Dr. Pavan Vasudeva, along with Dr. Neeraj Kumar and Dr. Abhishek Mandal. Speaking to Akashvani News, professor and head of the Department of Urology and Renal Transplant, Dr. Pavan Vasudeva said the procedure was fraught with dangers since the tumor not only had grown to massive size but had also encroached upon three critical body structures, the inferior vena cava, liver and the right kidney. Dr. Vasudeva opined that precise dissection is the key to performing such surgeries and that the 3D vision of the Vinci robot along with its dexterous robotic arms allows one to perform complex surgeries with greater precision than what is usually possible with laparoscopy. The surgery lasted over 3 hours. Post-operative recovery was also uneventful.
The benefit is that because we were able to do it robotically, these patients were spared of an incision, so they have lesser post-operative pain, they recover fast, they need lesser painkillers and they can be discharged earlier and they return back to their work fast. This is a milestone in the sense that this is the world's largest adrenal tumor which could be removed in a robotic fashion.
Dr. Vasudeva said, robotic surgery offers numerous benefits including small keyhole incision, precise work, reduced post-operative pain, early post-operative recovery and discharge with a faster return to work. He said, if this surgery had been performed by an open route, it would have required a skin incision of more than 20 centimeters, with subsequent complete healing requiring for few weeks. With Anupam's report, this is Manal Saeed for Parikrama.
आज हम जहां पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वहां प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना एक बड़ी राहत है। एक ऐसी खबर है उत्तर प्रदेश से। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च 2027 तक प्रदेश में कुल 8 लाख सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अंतर्गत मौजूदा वित्तीय वर्ष में 2.65 लाख संयंत्रों का इंस्टॉलेशन किया जाना है, जिसमें हर माह 22,000 और प्रत्येक जिले में औसतन 300 इंस्टॉलेशन किए जाएंगे। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता ओम अवस्थी की ये रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना को घर घर तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। इसके तहत मार्च 2025 तक पोर्टल पर करीब 11 लाख आवेदन मिले हैं। अब तक प्रदेश में 1 लाख से अधिक सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जा चुके हैं। मौजूदा समय में हर माह करीब 11,000 और प्रतिदिन 500 से अधिक इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं। योजना के तहत अब तक 2,500 से अधिक वेंडर्स को इम्पैनल्ड किया गया है, जबकि लगभग 1,800 वेंडर्स को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय संस्थान भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय और यूपी नेडा के सहयोग से वेंडर्स को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वेंडर्स को बैंकों के माध्यम से लोन और क्रेडिट गारंटी स्कीम का लाभ भी मिल रहा है ताकि उनकी आर्थिक क्षमता मजबूत हो सके। योजना को सफल बनाने के लिए सरकार ने इसके लिए जनपदवार, नगर निगम और नगर पालिका स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किए हैं। योजना की निगरानी और समीक्षा की व्यवस्था मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से जोड़कर की जा रही है जिससे प्रगति की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सके। फरवरी 2024 में शुरू हुई इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिकता पर रखते हुए पूरे प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश देश भर में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक रूफटॉप सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन करने वाला राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2027 तक आवासीय क्षेत्र में 1 करोड़ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन करना है। इसके लिए 75,021 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। 1 करोड़ घरों को लाभ पहुंचाने के लक्ष्य के साथ ही यह योजना सरकार को सालाना 75,000 करोड़ रुपए की बिजली लागत बचाने में भी मदद करेगी। इस योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने वालों को केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी सब्सिडी दे रही है। परिक्रमा के लिए ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया।
And well, since the markets are closed today, so no business news, we directly remember some of the personalities who gave their contribution in the Indian freedom struggle.
We remember the architect of the independent United State of Orisha, Krishna Chandra Gajapati Narayan Dev, who was born on the 26th of April, 1892. He was an educationist, freedom fighter, and a social reformer. Krishna Chandra was the king of Paralakimundi estate and the first prime minister of Orissa. The present-day Gajapati district of Orissa, which was earlier a part of the Ganjam district, has been named after.
Krishna Chandra attended the first roundtable conference in London on the 16th of November 1930, wherein he made a fervent appeal for creating a separate province of Odisha on the basis of language and homogeneity. It was due to the efforts of Maharaja Krishna Chandra Gajapati, Utkal Gaurav Madhusudan Das, Utkal Mani Gopal Bandhu Das, Fakir Mohan Senapati and other eminent members of Utkal Sammelani that the separate state of Odisha was formed on the 1st of April 19th.
He also became the first Prime Minister of Odisha from the 1st of April 1937 to the 18th of July 1937. Later on, he became the second Prime Minister of Orisha till 1944. He set up many hospitals, schools, colleges, industrial institutions and modern agricultural farms and provided a record number of 1,281 water tanks in his agriculturally dominant native taluk.
Krishna Chandra Gajapati left for his heavenly abode on the 25th of May 1974. His indomitable spirit of endeavor and perseverance to make Odisha a separate state is unparalleled and will remain as a golden chapter in the history of modern Odisha. We salute the great nationalist.
We also remember Dwarka Dasi, a prominent political worker from Golaghat, Assam. She was 5 months pregnant when arrested for her participation in the non-cooperation movement. While in jail, she was subjected to ill treatment by the jail authorities in Sibasagar. Following an abortion, Dwarika Dasi died on the 26th of April 1932 on account of the atrocities she faced. We salute the great daughter of India.
We also remember Indian National Army member Hazari, who was born on the 26th of April 1920 in District Gurgaon, Haryana. He joined the Indian National Army in 1943 and served in the Subhash Brigade. He was martyred while fighting the Allied forces in Imphal in 1944. We salute the great son of the soil.
We also remember martyr Kundar Singh, who took part in the First War of Indian Independence in 1857. Initially a soldier in the 12th Native Infantry Regiment of British Indian Army at Ambala, Haryana, he joined the uprising in the area. He was captured by the British soldiers and charged with mutiny and executed on the 26th of April, 1858. We salute the great son of India.
That brings us to the end of this episode.
और आइए अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार शंकर सिंह रघुवंशी की पुण्यतिथि है। इन्होंने अपनी जोड़ी संगीतकार जयकिशन के साथ मिलकर बनाई और शंकर जयकिशन नाम से प्रसिद्ध हुए। पृथ्वी थिएटर्स में ही काम करते करते शंकर और जयकिशन राज कपूर के करीबी हो गए। राज कपूर ने जब शंकर द्वारा लिखी उनकी कंपोजिशन अंबुआ का पेड़ है वही मुंडेर है, मेरे बाल माँ अब काहे की देर है की बनाई धुन सुनी, तो उन्होंने राम गांगुली की जगह शंकर जयकिशन को ही बरसात का संगीत सौंप दिया। यही धुन बाद में जिया बेकरार है, छाई बहार है के रूप में बरसात में आई। फिल्म बरसात में उनकी जोड़ी ने जिया बेकरार है और बरसात में हमसे मिले तुम सजन जैसा सुपरहिट संगीत दिया। फिल्म की कामयाबी के बाद शंकर जयकिशन बतौर संगीतकार अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। उन्हें 9 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया।
That's right, and since we are, you know, the nation is observing a state mourning because of Pope Francis's funeral, so we won't be playing any songs in this segment. Nonetheless, we are remembering those personalities. And another great personality on our list is S. Ramanujan, whose death anniversary is today. And even though he had almost no formal training in pure maths, he is considered as one of the greatest mathematicians of all time, who made substantial contributions to mathematical analysis, number theory, infinite series and continued fractions, including solutions to mathematical problems that were then considered unsolvable. Ramanujan initially developed his own mathematical research in isolation. According to Hans Eysenck, he tried to interest the leading professional mathematicians in his work, but he failed for most part. What he had to show them was too novel, too unfamiliar, and additionally it presented in unusual ways, so they were not bothered. Seeking mathematicians who could better understand his work, in 1913, Ramanujan began a mail correspondence with the English mathematician G. H. Hardy at the University of Cambridge in England. Recognizing Ramanujan's work as extraordinary, Hardy arranged for him to travel to Cambridge. In his notes, Hardy commented that Ramanujan had produced groundbreaking new theorems, including some that defeated him completely. And during his short life, Ramanujan independently compiled nearly 3,900 results that were mostly identities and equations. Many were completely novel. His original and highly unconventional results, such as the Ramanujan prime, the Ramanujan theta function, partition formulae and Mach theta functions, have opened entire new areas of work and inspired further research.
जी हाँ, गणित के क्षेत्र में अपने समय के अनेक दिग्गजों को पीछे छोड़ने वाले श्रीनिवास रामानुजन ने केवल 32 साल के जीवन काल में पूरी दुनिया को गणित के अनेक सूत्र और सिद्धांत दिए। इन्होंने खुद से गणित सीखा और अपने जीवन भर में गणित के 3,884 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। उनके सूत्र कई वैज्ञानिक खोजों में मददगार बने हैं। हाल में इनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। इनके कार्य से प्रभावित गणित के क्षेत्रों में हो रहे काम के लिए रामानुजन जनरल की स्थापना की गई।
Today we are remembering a fine actress of yesterday. Yes, yes, Meenu Mumtaz, whose real name was Malikunnisa Ali. It's her birth anniversary today. She was sister of India's ace comedian Mehmood and also part of the Mehmood Ali film family. Meenu Mumtaz appeared in many Hindi films of the 1950s and 60s and mostly she appeared as a dancer and a character actress.
1950 और 1960 के दशक की कई हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया। कई बार फिल्मों में वे डांसर के तौर पर नजर आई। उनकी सबसे ज्यादा मशहूर फिल्मों में सीआईडी, नया दौर, ताजमहल, गबन और जमीर शामिल है। पहली फिल्म सखी हातिम में मीनू मुमताज बलराज साहनी जैसे दिग्गज अभिनेता के साथ नजर आई। उन्होंने गुरुदत्त साहब के साथ भी काम किया। 14वीं का चांद, कागज के फूल, साहिब बीवी और गुलाम जैसी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया।
We're also remembering Nitin Bose today on his birth anniversary, a director, cinematographer and screenwriter of predominantly Hindi cinema. And he was born in Calcutta and died in the same city. In 30s and 40s, he worked with new theatres who made bilingual movies in both Bengali and Hindi. Later, he moved to Bombay and directed under the banners of Bombay Talkies and Filmistan. The first use of playback singing in Indian films occurred in films directed by Bose in 1935, first in Bhagya Chakra, which was a Bengali film, and later the same year in its Hindi remake Dhoop Chhaav.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और सायरा को. परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की. नमस्कार.